دیکھیے بھائی کتاب پر، وقد علم بذلك اي بوجه حصر الكلمه في الاقسام الثلاثه حد كل واحد منها اي من تلك الاقسام، وذلك لانه قد علم به اي بوجه الحصر ان الحرف كلمه لا تدل على معنى في نفسها بل تحتاج الى انضمام كلمه اخرى. اچھا بھائی، آپ عید کی طویل چھٹیاں گزار کر آئے ہیں، تو گزشتہ سبق کا خلاصہ پھر سن لیجئے، بلکہ خوب تفصیل کے ساتھ، اور کچھ مشکل باتیں بھی اس میں آئی تھیں وہ بھی میں دوبارہ بیان کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. اگر کچھ کمی تھی اب وہ دور ہو جائے گی، اور تمام باتیں انشاءاللہ آپ کو خوب اچھی طرح سمجھ میں آ جائیں گی. تو گزشتہ سبق میں ہم کلمہ کی تقسیم پڑھ رہے تھے بھائی، اور اس سے پہلے صاحب کتاب نے کلمہ کی تعریف کی تھی کہ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، کلمہ ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہو، مقرر کیا گیا ہو، یعنی متعین کیا گیا ہو مفرد معنی کے لیے. اور میں نے بیان کیا تھا کہ مفرد لفظ اور مفرد معنی کسے کہتے ہیں، کہ جزے لفظ جزے معنی پر دلالت نہ کرے تو وہ لفظ بھی مفرد اور وہ معنی بھی مفرد. اس کے بعد اس کی تقسیم کی اور بتلایا وہی اسم و فعل و حرف، ان کی کلمہ تین قسم پر ہے، اسم، فعل اور حرف بھائی. اور آگے جو ہے اس کی وجہ حصر ذکر کی، تو یہاں اشکال ہوا کہ وجہ حصر یہ تو دلیل ہے، دلیل کے لیے دعویٰ چاہیے، تو پہلے مصنف کو کیا کرنا چاہیے تھا، دعویٰ کرنا چاہیے تھا کہ کلمہ کی یہی تین قسمیں ہیں، اور اس کے بعد پھر دلیل حصر ذکر کرنی چاہیے تھی. تو جواب میں نے ذکر کر دیا تھا کہ جب صاحب کافیہ نے بتلا دیا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں، تو اس سے خود بخود ضمناً یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ یہی تین قسمیں ہیں، انہی میں کلمہ بند ہے. اگر مزید قسمیں ہوتی تو صاحب کافیہ اس کو بھی ذکر کرتے، تو جب صرف تین ذکر کی، معلوم ہوا یہی تین قسمیں ہیں اور کلمہ انہی کے اندر بند ہیں، تو ضمناً دعویٰ آ گیا. اور پھر آگے شارح جامی نے بھی آگے ای منقسمت الی ہذہ الاقسام الثلاثۃ و منحصرت فیہا، اس کے ذریعے اس ضمنی دعوے کو بیان کر دیا کہ یہاں ضمناً دعویٰ سمجھ میں آ رہا ہے. میں نے بتلایا تھا بعض شارحین نے ای منقسمت، اس کو ہیا کی خبر بنایا، اس کو اس لیے کیونکہ میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جب ضمیر دائر ہو جائے بین المرجع والخبر، مرجع کو دیکھیں تو ضمیر ایک قسم کی ہونی چاہیے، خبر کو دیکھیں تو ضمیر دوسری قسم کی ہونی چاہیے. جیسے یہاں پر وہی اسم و فعل و حرف، ہیا ضمیر کا مرجع ہے الکلمہ، اس کو دیکھیں تو ضمیر کو مؤنث ہونا چاہیے، اور آگے اس کی خبر ہے اسم و فعل و حرف، خبر مذکر ہے تو مرجع مؤنث ہے اور خبر مذکر ہے، تو مرجع کو دیکھیں تو ضمیر کو مؤنث لانا چاہیے، اور خبر کو دیکھیں تو ضمیر کو مذکر لانا چاہیے، کیونکہ مبتدا خبر میں بھی مطابقت ہوتی ہے. میں نے بتلایا تھا کہ ایسے موقع پر جب ضمیر دائر ہو جائے بین المرجع والخبر، تو اس موقع پر دونوں کی رعایت رکھنا جائز ہے، یعنی جس کسی کی بھی رعایت رکھ لی جائے ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو مرجع کی رعایت رکھیں اور آپ چاہیں تو خبر، کیونکہ دونوں کے رعایت تو ایک وقت میں ہو نہیں سکتی، ایک وقت میں یا مرجع کی رعایت ہوگی یا خبر کی رعایت ہوگی، تو جس کسی کی بھی رعایت رکھ لی جائے بات ٹھیک ہے. تو صاحب کافیہ نے مرجع کی رعایت رکھی اور ہیا ضمیر مؤنث کی لے کر آ گئے، تو خبر کی رعایت انہوں نے نہیں رکھی. اور یاد رکھنا ایسے موقع پر اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ خبر کی رعایت رکھی جائے. چنانچہ بعض شارحین نے پھر اشکال کیا کہ بہتر تو یہ تھا کہ کس کی رعایت رکھی جاتی، خبر کی رعایت رکھی جاتی، لیکن صاحب کافیہ نے خبر کی رعایت نہیں رکھی. تو چنانچہ پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ جو منقسمت ہے یہ ہے ہیا کی خبر، اسم و فعل و حرف نہیں ہے خبر، بلکہ خبر کیا ہے منقسمت، اور یہ بھی مؤنث اور ہیا بھی مؤنث، تو دیکھو اب خبر کی رعایت ہو گئی. لیکن میں نے بتلایا یہ میرے خیال میں یہ تقریر درست نہیں ہے، اس لیے کیونکہ ایسے موقع پر چاہے خبر کی رعایت رکھی جائے چاہے مرجع کی، دونوں ٹھیک ہیں، البتہ خبر کی رعایت رکھنا اولا ہے. تو زیادہ سے زیادہ ایک خلاف اولا بات ہوئی ہے, کوئی کلام میں فساد نہیں آیا, کوئی خرابی نہیں آئی کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہیں کہ اسم و فعل و حرف, یہ خبر ہے ہی نہیں. خبر کیا ہے؟ منقسمت. یہ تو آپ تب کہتے اگر کلام میں کوئی فساد ہوتا, کوئی خرابی ہوتی, حالانکہ کلام میں کوئی فساد اور خرابی نہیں ہے. تو لہذا منقسمت ان کو خبر قرار دینا یہ تقریر میرے خیال میں مناسب نہیں ہے. بھائی یہاں سے صرف صاحب جامی جو ہے وہ جو دعویٰ ضمناً سمجھ میں آ رہا تھا کہ کلمہ کی یہی تین قسمیں ہیں اور انہی میں یہ بند ہے, وہ دعویٰ ذکر کر رہے ہیں آگے دلیل حصر کے لیے. پھر آگے دلیل حصر شروع ہوئی تھی اور دلیل حصر کے اندر انہوں نے بتلایا تھا کہ یا تو کلمہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا. اگر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے, اور اگر دلالت کرے تو پھر اس کے معنی کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا نہیں ملا ہوگا. اگر نہ ملا ہو تو پھر یہ اسم ہے, اور اگر ملا ہو تو یہ فعل ہے. تو یہاں پر وجہ حصر کے اندر دلالت کا ذکر آیا تو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ یہ تو آپ کی دلیل دعویٰ کے مطابق نہیں. دعوے کے اندر دیکھو کہ یہ کلمہ کی یہی تین قسمیں ہیں, انہی میں بند ہے, یہ ہے دعویٰ. اور آگے دلیل کیا آئی؟ کیونکہ یا تو کلمہ اپنے معنی پر خود دلالت کرے گا یا دلالت نہیں کرے گا. تو دلیل کے اندر آپ دلالت کو لے آئے اور دعوے کے اندر تو کوئی دلالت کا ذکر نہیں, تو یہ آپ کی یہ دلیل دعوے کے مطابق نہیں ہے. تو اس کا جواب انہوں نے دیا تھا کہ بھئی یہ دعویٰ کس کی قسموں کے بارے میں ہے؟ کلمہ. اور کلمہ کس کو کہتے ہیں؟ وہ لفظ جس کو کسی مفرد معنی کے لیے وضع کیا جائے, تو اس میں کلمہ کے اندر وضع ہوتی ہے, اور وضع مستلزم دلالت ہے. وضع کو دلالت لازم ہے. وضع ہوتی ہی کس لیے ہے؟ دلالت کے لیے ہوتی ہے. ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے, ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے وضع کیا جاتا ہے تاکہ پہلی چیز دوسری چیز پر دلالت کر دے. جیسے سرخ اشارے کو گاڑی کے روکنے کے لیے وضع کیا گیا ہے, تو سرخ اشارہ دیکھتے ہی آپ گاڑی روک دیتے ہیں. دیکھو سرخ اشارے نے کس پر دلالت کی؟ گاڑی روکنے پر. تو دیکھا وضع ہوتی ہی کس لیے ہے؟ دلالت کے لیے ہے. تو وضع مستلزم دلالت ہے. تو جہاں وضع ہوگی وہاں دلالت ضرور ہوگی. تو یہ وجہ حصر ہے کلمہ کی اقسام کی, اور کلمہ کے اندر وضع ہوتی ہے اور وضع کو مستلزم ہے دلالت. تو دلالت یہاں اس کا ذکر ضمناً آ چکا ہے بھائی. اس کے بعد پھر آپ کو انہوں نے بتلایا تھا کہ یہ فی نفسیہا جو ہے یہ صفت ہے معنی کی. علی معنن کائنن ای ثابتن فی نفسیہا, ایسا معنی جو اس کی کلمے کی ذات میں ثابت ہو. ایسا معنی جو کلمے کی ذات میں ثابت ہو. تو کلمے کی ذات میں معنی کے ثابت ہونے کا کیا مطلب؟ وجہ حصر کیا بیان کی؟ کہ یا تو کلمہ ایسے معنی پر دلالت کرے گا جو کلمہ کی ذات میں ہوگا, یا ایسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا. تو معنی کے کلمے کی ذات میں ہونے کا کیا مطلب؟ معنی کلمہ کی ذات میں ہونے کا معنی یہ ہے کہ کلمہ خود بخود اس معنی پر دلالت کرے, وہ کسی اور کلمے کے محتاج نہیں ہے کہ اس پر دلالت کرنے کے لیے. میں نے اس کی مثال ذکر کی تھی, ایک ہے لفظ ابتدا, اس کا معنی بھی شروع کرنا, اور ایک ہے لفظ من, اس کا معنی بھی ہے شروع کرنا. تو ابتدا کا معنی بھی شروع کرنا اور من کا معنی بھی شروع کرنا, لیکن ابتدا کا لفظ بولتے ہی آپ اس کا معنی سمجھ گئے. ابتدا کا کیا معنی ہے؟ شروع کرنا. لیکن من میں کہوں تو اس کا معنی شروع کرنا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. جب تک من کے ساتھ دوسرے کلمے نہیں جڑیں گے تب تک من کا معنی شروع کرنا آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسے مثلا میں کہتا ہوں سر تو من البیت الى المسجد, میں کمرے سے چلا, یا سر تو من الدار الى المسجد, میں گھر سے چلا مسجد تک. تو یہاں دیکھو چلنا بھی ذکر ہے, کس چیز کی ابتدا ہو رہی ہے؟ چلنے کی. اور کہاں سے ابتدا ہو رہی ہے؟ گھر سے. تو دیکھا چلنے کا بھی ذکر ضروری, اور جہاں سے ابتدا ہے اس کا بھی ذکر ضروری. اب من نے اپنے معنی پر دلالت کی, سر تو من الدار الى المسجد, मैं चला घर से मस्जिद तक। मालूम हुआ मेरे चलने की इब्तिदा कहां से हो रही है, घर से हो रही है। ये किसने बताया? मीन ने। तो देखा मीन का माना भी था शुरू करना, लेकिन अकेले मीन ने इस माना पर दलालत नहीं की। जब इसके साथ सिरतू और अद्दार को मैंने जिक्र कर दिया, अब आपको पता चला कि किस चीज की इब्तिदा हो रही है, चलने की, और कहां से हो रही है, घर से। तो मीन जो है अपने माना यानी शुरू करने पर खुद ब खुद दलालत नहीं करता, जबकि इब्तिदा जो है वो अपने माना यानी शुरू करने पर खुद ब खुद दलालत करती है। बात क्या चल रही थी? वजह हसर जिक्र हो रही थी कि कलिमा या तो ऐसे माना पर दलालत करेगा फी नफ्सिहा, जो किस में होगा, उस कलिमे की जात में होगा। कलिमे की जात में माना होने का क्या मतलब है कि कलिमा से वो माना खुद ब खुद समझ में आए, उसके साथ किसी दूसरे कलिमे को जोड़ने की जरूरत न हो, यानी वो माना मुस्तकिल बिल मफहूम हो। क्या हो? मुस्तकिल बिल मफहूम हो, उस लफ्ज से मुस्तकिलन वो माना समझ में आ रहा हो। मैंने इब्तिदा कहा, मुस्तकिलन आपको क्या माना समझ में आ गया, शुरू करना। मैंने कहा मीन, अब आपको शुरू करने का माना समझ में नहीं आया। तो कलिमा या तो ऐसे माना पर दलालत करेगा जो उसकी जात में होगा या नहीं करेगा, अगर ना करे तो फिर वो हर्फ है। तो कलिमा अगर ऐसे माना पर दलालत ना करे जो उसकी जात में हो तो उसको क्या कहते हैं? हर्फ। और अगर ऐसे माना पर दलालत करे जो उसकी जात में है, फिर आगे उन्होंने कहा था कि वो इम्मा अन यक्तरीना बि अहदिल अज़मिनति सलासती औला, कि वो माना मिला होगा तीन जमानों में से किसी एक के साथ या मिला हुआ नहीं होगा। तवज्जो है, या तो वो माना मिला हुआ होगा तीन जमानों में से किसी एक जमाने से, इम्मा अन यक्तरीना, तवज्जो है या इबारत पे नजर रखें किताब में भाई, इम्मा अन यक्तरीना बि अहदिल अज़मिनति सलासा, कि या तो वो मिला हुआ होगा तीन जमानों में से किसी एक के साथ, औला, या मिला हुआ नहीं होगा। यहां पर साहिब जामी रहमहुल्ला ने बतलाया था कि अन यक्तरीना की जमीर लफ्ज को नहीं राजे बल्कि माना को राजे है। किसको राजे है? देखो मसलन मैं आपसे कहता हूं ज़ाराबा, जी ज़ाराबा, ज़ाराबा का क्या माना? उस मर्द ने पिटाई की। किस जमाने में? जमाने माजी में, गुज़श्ता जमाने के अंदर। तो देखो इन्होंने क्या कहा, कलीमा या तो ऐसे माना पर दलालत करेगा जो उसकी जात में होगा या दलालत नहीं करेगा, अगर ना करे तो वो हर्फ है। अगर कलीमा ऐसे माना पर दलालत करे जो उसकी जात में है, तो फिर वो माना मिला हुआ होगा तीन जमानों में से किसी एक से, या मिला हुआ नहीं होगा। अगर मिला हुआ हो तो वो फेल, अगर मिला हुआ ना हो तो वो इसम। तो देखो वो माना जो है वो जमाने के साथ मिला होता है, वो लफ्ज नहीं। एक है लफ्ज, एक है उसका माना। तो यहां था इम्मा अन यक्तरीना, वो मिला हुआ होगा। तो साहिब जामी ने आगे बतला दिया जालिकल माना, कि अन यक्तरीना के अंदर जमीर किसको राजे है? माना को, क्योंकि एक है लफ्ज, एक है उसका माना। याद रखो ये जो लफ्ज है ये जमाने से नहीं जुड़ा होता, जैसे ज़राबा, ये देखो ये लफ्ज नहीं जमाने के साथ जुड़ा हुआ। मसलन मैंने कहा ज़राबा, तो क्या ये माजी के साथ जुड़ गया जाकर, या यूं कहो यज़रिबू, क्या ये हाल या इस्तकबाल से जुड़ गया? नहीं, ये लफ्ज नहीं जमाने के साथ जुड़ा होता बल्कि माना जुड़ा होता है। बल्कि इससे ज्यादा वजाहत इज़रिब के जरिए होगी। देखो मसलन मैं आपसे कहता हूं इज़रिब, ये फेले अमर है और आप जानते हैं इसमें कौन सा जमाना होता है? मुस्तकबिल वाला। तवज्जो है, इज़रिब में मुस्तकबिल वाला जमाना है। मैं किसी को हुक्म देता हूं कि इज़रिब ज़ैदन, क्या करो तुम, ज़ैद की पिटाई करो, तो ये इस गोया आगे जो मुस्तकबिल वाला जमाना है उसमें क्या करो, ज़ैद की पिटाई करो। अब मुझे बताइए इज़रिब में कौन सा जमाना है? मुस्तकबिल वाला। तो क्या ये इज़रिब का लफ्ज मुस्तकबिल में से जुड़ गया, इज़रिब का लफ्ज मुस्तकबिल में चला गया? नहीं, इज़रिब का लफ्ज मुस्तकबिल में नहीं गया। इज़रिब का माना जो पिटाई करना है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कि तुम पिटाई करो, किस जमाने में? मुस्तकबिल के जमाने में। इसी तरह जब ज़राबा कहा, ज़राबा कहा, तो ये माना नहीं कि ज़राबा के लफ्ज के साथ माजी का जमाना जुड़ गया, या ज़राबा का लफ्ज माजी के जमाने में चला गया। या यज़रिबू फेले मुजारे है, ये हाल और इस्तकबाल के माना में है, तो इसका ये माना नहीं कि यज़रिबू का लफ्ज किसमें चला गया, हाल या इस्तकबाल में, नहीं ये माना नहीं, बल्कि उसका माना जो है, ज़राबा का क्या माना? पिटाई करना। ये पिटाई करना माजी के जमाने में है। ये पिटाई कब हुई है? माजी के जमाने में यज़रिबु, ये पिटाई हो रही है या होगी हाल में, या देखो ये पिटाई होना, ये जो माना है ये हाल इस्तकबाल में है। इज़रिब, इज़रिब का क्या माना, पिटाई करना, लेकिन किस जमाने में है, मुस्तकबिल में, कि मुस्तकबिल में पिटाई करो। बात समझ में आ गई। तो लफ्ज जो है वो जमाने के साथ नहीं जुड़ा होता, बल्कि उसका माना जमाने के साथ जुड़ा होता है। बात समझ में आ गई। फेल किसे कहते हैं, वो कलिमा है जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है और उसका माना तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ जुड़ा होता है। मैंने आपको बतलाया था कि एक फेल का अपना माना होता है और एक है जमाना। फेल का अपना माना अलग होगा और जमाने पर उसकी सूरत दलालत करेगी। जमाना अलग होगा, ज़ाराबा, देखो ज़ाराबा, ये ज़ाराबा, ये इसका माना क्या है, पिटाई करना, लेकिन इसकी जो सूरत है, ज़ाद है, रा है और बा, और तीनों पर जबर है, ये सूरत किस पर दलालत कर रही है कि किस जमाने में हुई है ये पिटाई, माजी के जमाने में। या ज़रीबू, देखो इसके अंदर भी वही ज़ाद रा बा वाला मादा आ गया। या ज़रीबू का माना भी पिटाई करना, लेकिन इसकी सूरत किस जमाने पर दलालत कर रही है, हाल या इस्तकबाल। इज़रिब के अंदर भी वही ज़ाद रा बा है, लेकिन इसकी सूरत किस पर दलालत कर रही है, मुस्तकबिल वाले माना पर, कि पिटाई कब मतलूब है, मुस्तकबिल में मतलूब है। तो फेल का अपना माना अलग होता है, जैसे यहां ज़ाद रा बा जहां भी मादा या सब का माना है पिटाई करना, और जमाना अलग उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, तो जमाना उस माना के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो ये इबारत आई थी, इम्मा मिन सिफतिहा अय्यक्तरीना दालिकल मानल मदलूल अलैहि बिनफसिहा, मिला हुआ होगा वो माना जो मदलूल अलैह है नफ्से कलिमा से, जो समझ में आ रहा है, जिस पर दलालत कर रहा है खुद कलिमा। फिल फहम अनहा, मैंने बतलाया था कि फिल फहम अनहा, इसके जरिए साहिबे जामी दरअसल मस्तर को निकालना चाहते हैं, किससे, फेल की तारीफ से। फेल किसे कहते हैं, कि वो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है और तीन जमानों में से कोई जमाना भी उसके साथ, तवज्जो है, फिर समझ लो, फिल फहम अनहा, फेल किसे कहते हैं, जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है और तीन जमानों में से कोई जमाना भी उसके साथ जुड़ा हुआ होता है, मिला हुआ होता है। तो अब मस्तर भी इस तारीफ के अंदर दाखिल हो रहा है, क्यों, जरबुन का क्या माना, पिटाई करना, और ये पिटाई भी किसी जमाने में होगी कि नहीं, बगैर किसी जमाने की पिटाई हो सकती है, नहीं। शुर्ब का क्या माना, पीना, और ये पीना भी किसी जमाने में होगा कि बगैर जमाने के होगा, ये भी किसी जमाने में होगा, या माजी में, या हाल में, या इस्तकबाल में। इसी तरह जर्ब है, ये जर्ब भी या तो जमाने माजी में होगी, या हाल में, या इस्तकबाल। तो मस्तर भी हमेशा किसी न किसी जमाने में होता है, बगैर जमाने के मस्तर नहीं हो सकता। तो फेल की तारीख में कौन दाखिल हो रहा है, मस्तर, क्योंकि इन्होंने क्या कहा, फेल वो लफ्ज है जो अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करे और उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना मिला हुआ हो। तो मस्तर भी अपने माना पर खुद ब खुद दलालत करता है। जरबुन मैंने कहा, माना समझ में आया या नहीं, माना पिटाई करना भी समझ में आया, और ये हमेशा किसी न किसी जमाने में होगा, माजी में, हाल में, या इस्तकबाल में। शुरबुन का क्या माना है, पीना, यह अपने माना पर दलालत भी खुद ब खुद कर रहा है और यह भी किसी न किसी जमाने में होगा। तो मस्तर किसके अंदर दाखिल हो रहा था, फेल की तारीफ के अंदर। तो फिल फहम अनहा, इस कैद के जरिए मस्तर को फेल की तारीफ से खारिज कर दिया। फिल फहम अनहा, उस कलिमा से मफहूम होने में, उस कलिमा से, देखो किताब की इबारत देखो, या तो वो माना मिला हुआ होगा, फिल फहम अनहा, उस कलिमा से, तवज्जो है, वो माना मिला हुआ होगा, इधर देखिए, वो माना मिला हुआ होगा किसके साथ, तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ। फिल फहम अनहा, उस कलिमा से मफहूम होने में, तवज्जो से सुनो, वो माना मिला हुआ होगा किसके साथ, तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ। किस तरह, फिल फहम अनहा, उस कलिमा से मफहूम होने में, उस कलिमा से मफहूम होने में वो माना तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ जुड़ा हुआ होगा। जरबुन का माना मफहूम हो रहा है या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, क्या माना? पिटाई करना। जराबा का माना आपको मफहूम हो रहा है कि नहीं? जराबा से क्या माना? पिटाई की उसने जमाना है माजी में। तो देखो जरब से भी एक माना मफहूम हो रहा है, जराबा से भी एक माना मफहूम हो रहा है, लेकिन कौन सा माना मफहूम होने में जमाने के साथ जुड़ा हुआ है? जराबा वाला। जरब उनका क्या माना? पिटाई। जरब उनसे पिटाई करने का माना तो मफहूम हो रहा है, लेकिन ये जो पिटाई करना मफहूम हो रहा है जरब उनसे, ये मफहूम होते वक्त किसी जमाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जरब उनका क्या माना? पिटाई करना। देखा आपने, कोई जमाना साथ जोड़ा नहीं, क्योंकि इसके साथ कोई जमाना जुड़ा हुआ। तो जरब उनसे भी उसका माना मफहूम हो रहा है, जराबा से भी उसका माना मफहूम हो रहा है, लेकिन मफहूम होने में जराबा का माना किसके साथ जुड़ा हुआ है? जमाने माजी के साथ। यह अजरीबू से भी पिटाई करने का माना मफहूम हो रहा है, लेकिन यह किस जमाने के साथ जुड़ा हुआ है? हाल या इस्तकबाल के साथ। और इजरीब से भी पिटाई करने का माना मफहूम हो रहा है, लेकिन यह किस जमाने के साथ जुड़ा हुआ है? मुस्तकबिल के साथ। और जरबुन से भी उसका माना मफहूम हो रहा है, लेकिन यह मफहूम होने में किसी जमाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। बात समझ में आ गई? तो फिल फहमी अनहा का क्या माना? कि उस कलिमा से जो माना मफहूम हो रहा है, मफहूम होने में ही वो जुड़ा हुआ है, किसके साथ? जमाने के साथ। तो मस्तर जो होता है उसका वुकूअ जमाने में होता है, उसका माना मफहूम होने में जमाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। जरबुन, ये जरब पिटाई करना, ये जरूर किसी ना किसी जमाने में होगी, लेकिन जरबुन से जो माना मफहूम हो रहा है, क्या? पिटाई करना। यह माना मफहूम होने में किसी जमाने के साथ मिला हुआ नहीं। बात समझ में आ गई? तो जरबुन का जो माना है वो इससे मफहूम होने में किसी जमाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं। हां, ये जरबुन होगी हमेशा किसी न किसी जमाने में। मस्तर का वुकू और तहकुक तो किसी जमाने में होता है, लेकिन उससे जो माना मफहूम होता है वो माना किसी जमाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। जबकि फेल का जो माना होता है वो फेल से जब मफहूम होता है तो जमाना उसके साथ जुड़ा होता है। जैसे जाराबा का क्या माना है? इससे पिटाई करना मफहूम हो रहा है, लेकिन यह पिटाई करना किस जमाने में है? जमाने माजी के अंदर है। यह फायदा था फिल फहम अनहा का। और बी अहदिल अजमिनत सलासा, तीन जमानों में से किसी एक के साथ जुड़ा हुआ होगा। अनिल माजिया वल हाल वल इस्तकबाल, यानी माजी हाल और इस्तकबाल, माजी हाल और इस्तकबाल भाई, यानी वो तीन जमाने ये हैं, माजी हाल और इस्तकबाल। मैंने आपको बतलाया था फेल का माना अपना अलग होगा और जमाना उसके साथ अलग जुड़ा हुआ होगा। जराबा का में ज़ादरा बा का मादा है, इसका माना पिटाई करना, लेकिन ये जो इसकी सूरत है ज़ादरा और बा, तीनों पर फतहा है ज़ाराबा, इसने माजी की जमाने पर दलालत की। या जरीबू, इसका माना भी है पिटाई करना, लेकिन इसकी जो सूरत है उस सूरत ने किस पर दलालत की? हाल या इस्तकबाल पर। ए जरीब, इसके अंदर भी ज़ाद राबा वाला मादा है, लेकिन इसकी सूरत ने किस जमाने पर दलालत की? मुस्तकबिल वाले जमाने पर दलालत की। तो फेल का अपना माना अलग होता है और जमाना उसके साथ अलग जुड़ा हुआ होता है। लिहाजा अगर कोई इश्काल करे कि माजी देखो एक जमाना है, हाल एक जमाना है और मुस्तकबिल एक जमाना है, यह भी फेल की तारीफ में दाखिल हो गए, क्योंकि माजी से आपको कौन सा जमाना समझ में आया? गुज़श्ता जमाना। देखो खुद ब खुद अपने माना पर इसने दलालत की, किसी और कलिमे के जुड़ने का मोहताज नहीं, और साथ जमाना भी है, कौन सा? माजी वाला। और हाल का क्या माना? हाल, मौजूदा जमाना। इसने अपने माना पर खुद ब खुद दलालत की, किसी और कलिमे के साथ जुड़ने का यह मोहताज नहीं, और जमाना भी है, कौन सा? हाल वाला। और मुस्तकबिल, इसने अपने मुस्तकबिल से कौन सा माना, कौन सा जमाना मुराद है? आने वाला। तो इसने अपने माना पर खुद ब खुद दलालत की, किसी और कलिमे के साथ ये जुड़ने का मोहताज नहीं, और जमाना भी है मुस्तकबिल वाला। तो इनको भी फेल कहना चाहिए, माजी हाल और मुस्तकबिल को। तो जवाब गुजर गया। जवाब यह कि फेल का अपना माना अलग होता है और जमाना उसके साथ अलग जुड़ा होता है। और माजी हाल और इस्तकबाल, ये तो ऐन जमाने का नाम है, इनका अपना माना अलग हो और जमाना अलग जुड़ा हो ऐसा नहीं है। माजी, माजी का अपना माना कुछ और हो और गुज़श्ता जमाना साथ जुड़ा हो, फिर हम कहेंगे ये फेल है, लेकिन इसका तो अपना माना ही क्या है? जमाना, गुज़श्ता जमाना है जी। इसका अपना माना तो और कुछ है ही नहीं, ये तो गुज़श्ता जमाने ही का नाम है, लिहाजा ये फेल की तारीफ से खारिज। फेल का माना अलग होता है और जमाना उसके साथ अलग जुड़ा होता है, लेकिन जबकि माजी हाल और मुस्तकबिल ऐसे नहीं है, वो खुद ऐन जमाने का नाम है, उनका अपना माना अलग हो और जमाना साथ जुड़ा हुआ हो ऐसा नहीं है, लिहाजा ये तारीफ से खारिज हो गए। और फिर इसके साथ साथ इन्होंने वजह तस्मीय भी हर एक की बतलाई थी कि हर्फ को हर्फ क्यों कहते हैं, इसम को इसम क्यों कहते हैं और फेल को फेल क्यों कहते हैं। हर्फ हर्फ को हर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि हर्फ का माना है तरफ, जानिब, किनारा। हर्फ भी चूंकि एक किनारे पर होता है इसलिए उसको हर्फ कहते हैं। इस पर इश्काल होता है कि हर्फ तो कभी बीच में भी आ जाता है, जैदुन फिद्दारी, जैदुन और अद्दार के बीच में फी आ गया। तो जवाब मैंने बतलाया था कि भाई जानिब में होने का यह माना नहीं है कि वो बीच में नहीं आ सकता, बल्कि माना यह है कि वो कलाम में न मुस्नद बनता है और न मुस्नद इले बनता है। फेल जो है, फेल और इसम और फेल, वो तो मुस्नद और मुस्नद इले बन सकते हैं लेकिन हर्फ मुस्नद और मुस्नद इले नहीं बनता। यहां उन्होंने जिक्र किया था कि इसम और फेल कलाम में उम्दा वाके होते हैं जबकि हर्फ कलाम में उम्दा वाके नहीं होता, ये एक जानिब होता है। मैंने बतलाया था कि यहां दो लफ्ज हैं हमेशा याद रखना, एक है उम्दा और एक है फजला। उम्दा जो कलाम का आला हिस्सा हो, नाम से ही पता चल रहा है, और फजला का माना होता है जायद, जो कलाम का जायद हिस्सा है। तो उम्दा हिस्सा कलाम का उम्दा हिस्सा यानी वो बुनियादी जुज जिसके बगैर कलाम मुकम्मल ही नहीं होता, और वो दो हैं, एक मुस्नद और एक मुस्नद इले भाई। और इसम वो मुस्नद भी बनता है और मुस्नद इले भी बनता है, फेल वो मुस्नद तो बनता है मुस्नद इले नहीं बनता, और हर्फ ना मुस्नद बनता है और ना मुस्नद इले बनता है। तो कलाम के आला और उम्दा जुज कौन से हैं? मुस्नद और मुस्नद इले हैं, यानी कलाम का वो बुनियादी जुज जिसके बगैर कलाम पूरा ही नहीं हो सकता और जिसको बगैर किसी दलील के हजफ करना भी जायज नहीं। आप मुब्तदा या खबर को तभी हजफ करेंगे जब वहां कोई करीना मौजूद हो जिससे सुनने वालों को पता चल जाए कि यहां मुब्तदा महजूफ है या खबर महजूफ है। अगर आप कोई करीना भी कायम नहीं करेंगे तो फिर तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो उम्दा है यानी मुस्नद और मुस्नद इलैह, ये कलाम का बुनियादी जुज है और इनमें से किसी एक को भी बगैर दलील के हजफ करना जायज नहीं और इनके बगैर कलाम मुकम्मल नहीं होता। ये दोनों होंगे तो कलाम मुकम्मल होगा। जबकि हर्फ जो होता है वो न मुस्नद बनता है और न मुस्नद इलैह, वो उम्दा नहीं होता, कलाम के अंदर उम्दा वाकई नहीं होता। जबकि इसके मुकाबले में है, उम्दा के मुकाबले में फजला, यानी बाकी जितनी चीजें हैं मुस्नद और मुस्नद इलैह के अलावा वो सब फजला में दाखिल हो गई, चाहे वो मफूल मुतलक है, चाहे मफूल बिही है, चाहे मफूल फी है, चाहे मफूल लहू है, चाहे मफूल माहू है, चाहे हाल है, चाहे तमीज है वगैरह, जितनी चीजें हैं सब किस में आ गई? फजला। फजला का क्या माना? जायद चीज। तो इनको कलाम से हजफ भी कर दिया जाए, कलाम फिर भी पूरा है क्योंकि वो मुस्नद और मुस्नद इलैह पर मुश्तमिल है। जैसे मैं आपसे कहता हूं जाराबा जैदुन अमरान, जैद ने अमर की पिटाई की, जाराबा मुस्नद, जैदुन फाइल है मुस्नद इले और अमरान मफूल है, यह है फजला। तो जाराबा जैदुन से कलाम पूरा है, आप अमरान को जिक्र करें या ना करें कलाम फिर भी पूरा है। मसलन मैं सिर्फ आपसे कह देता हूं जाराबा जैदुन, बात फिर भी पूरी है। ज्यादा से ज्यादा यह हुआ कि आपको मफूल का पता नहीं चला, कोई हरज नहीं, मफूल को कभी कभार हजफ कर लिया जाता है। इतना तो आपको पता चल गया जराबा जैदों से कि जैद ने किसी की पिटाई की है, तो कलाम यह पूरा है। हां अलबत्ता कभी कभार फजला भी जरूरी हो जाता है, उसके बगैर कलाम का माना फासिद हो जाता है। जैसे मैंने उसकी मिसाल जिक्र की थी, कुरान में अल्लाह क्या फरमाते हैं, वला तमशी फिल अर्ज़ी मरहा, और तू न चल जमीन पर अकड़कर, और तू न चल जमीन पर अकड़कर। अब यहां ये मरहन ये हाल है और फजला है, लेकिन इसके बगैर कलाम का माना फासिद हो जाएगा, क्योंकि अगर मरहन को हटा दिया जाए तो कलाम का माना बन जाएगा वला तमशी फिल अर्ज, और तू जमीन में न चल, तो माना तो यह बन जाएगा कि अल्लाह जमीन पर चलने से रोक रहे हैं, हालांकि अल्लाह जमीन पर चलने से नहीं बल्कि अल्लाह ताला तो तकब्बुर के साथ चलने से रोक रहे हैं, तकब्बुर से मना फरमा रहे हैं। तो यहां पर देखो ये मरहन है तो फजला, लेकिन इसको हजफ करेंगे तो कलाम का माना फासिद हो जाएगा। और फिर उसके बाद बतलाया था कि इसम को इसम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माखूज है सिमवन से, सिमवन समवन सुमवन, ये मुसलसुल फा है, इसमें तीनों तरह अरबों से सुना गया है, सिमवन भी समवन भी और सुमवन भी, और ये बुलंदी को कहते हैं ऊंचा होना, चूंकि इसम भी अपनी दोनों कसीमैन पर ऊंचा है, दोनों कसीमें इफेल और हर्फ पर क्या है, ऊंचा। अकेले इसम से कलाम पूरा हो जाता है क्योंकि इसम मुस्नद भी बनता है और मुस्नद इलैह भी। तो आप दो इसम ले लें, एक को मुस्नद इलैह बना दें और एक को मुस्नद बना दें तो कलाम पूरा हो जाएगा। जैसे जैदुन कायमुन, जैदुन भी इसम, कायमुन भी इसम और कलाम पूरा है। तो चूंकि इस अकेले से कलाम पूरा हो जाता है तो ये अपनी दोनों किस्मों पर ऊंचा है। इसका इसका मकाम क्या है, इन दोनों से ऊंचा है, इसलिए इसको इसम कहते हैं। जबकि अकेले फेल या अकेले हर्फ से कलाम पूरा नहीं होता। यह था बसरा वालों का मसहब कि इसम किससे माखूज है, सिमुन से, और फिर आखिर से वाव को हजफ करके शुरू में क्या ले आए, हमजा वसल ले आए, तो क्या बन गया, इसमुन बन गया। जबकि कूफा वाले उलमा फरमाते हैं कि इसम माखूज है विस्मुन से, और विस्मुन का माना है अलामत। इसम चूंकि अपने मुसम्मा पर अलामत होता है इसलिए इसको इसम कहते हैं। तो असल में ये क्या था, विस्मुन, फिर वाव को हजफ करके क्या लिया है, हमजा वसल ले आए, तो क्या बन गया, इसमुन बन गया। तो इसम अपने मुसम्मा पर अलामत होता है, मुसम्मा यानी जिसका नाम है, मसन किताब इसम है, ये अपने मुसम्मा पर अलामत है। मैंने जैसे ही किताब का आपके जहन में किसकी सूरत आ गई, किताब की सूरत आ गई। मैंने जैसे ही कलम कहा आपके जहन में कलम की सूरत आ गई, कलम का मफहूम आ गया। इसी तरह मैंने जैसे ही जैद कहा आपके जहन में जैद की सूरत और पहचान आ गई। तो इसम चूंकि अपने मुसम्मा पर अलामत होता है, जैसे ही इसम बोले मुसम्मा फौरन समझ में आ जाता है, इसलिए इसम को इसम कहते हैं। यह विस्मुन से माखूज है। इस पर इश्काल होता है कि फेल से भी तो फेल का माना समझ में आता है, हर्फ से भी तो हर्फ का माना समझ में आता है, फिर तो उनको भी क्या कहना चाहिए, इसम कहना चाहिए। बात समझ में आ गई। लेकिन उसका जवाब यह कि भाई तस्मिया के लिए वजह चाहिए, वजह में उमूम जरूरी नहीं। इसम को इसम क्यों कहते हैं, हमने वजह बयान कर दी कि चूंकि अपने मुसम्मा पर क्या होता है, अलामत, यानी इसे मुसम्मा समझ में आता है इसलिए इसको इसम कहते हैं। अब इसका यह माना नहीं कि जिस लफ्ज से भी उसका माना समझ में आए हरे को क्या कहना शुरू कर दें, इसम कहना शुरू कर दें। इसम क्यों कहते हैं, वजह चाहिए थी, हमने वजह जिक्र कर दी। लेकिन उस वजह में उमूम नहीं कि जहां भी वो वजह पाई जाए वहां पर वो नाम भी आ जाए, इसम भी उसको कहा जाए, ऐसा नहीं। तो फेल से फेल का माना समझ में आता है, हर्फ से हर्फ का माना समझ में आता है, जब उसके साथ दूसरे कलिमात मिल जाएं, मसलन जराबा जैदुन, जराबा का माना समझ में आ रहा है या नहीं, सिर तो मिनदारी इलाल मस्जिद, सिर तू का माना, फेल का माना समझ में आया या नहीं, मीन का माना भी समझ में आया कि नहीं। तो देखा, फेल भी अपने माना पर दलालत करता है, उससे उसका माना समझ में आता है, मीन भी अपने माना पर दलालत करता है कलाम के अंदर जब इस्तेमाल होगा और इसके कलाम का माना समझ में आएगा। तो फेल और हर्फ भी अपने माना पर अलामत है। तो जवाब मैंने बतला दिया कि तस्मिया के लिए वजह चाहिए कि यह नाम क्यों रखा गया, इसम को इसम क्यों कहते हैं, लेकिन वजह में उमूम जरूरी नहीं है कि जहां भी वो वजह पाई जाए वही नाम भी आ जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। और फिर उसके बाद बात आई थी कि फेल को फेल क्यों कहते हैं। मैंने बतलाया था कि फेल का माना मुरक्कब है तीन चीजों से, एक माना मस्दरी होता है उसके अंदर, ज़राबा, देखो ये फेल है, इसके अंदर एक जरबुन वाला माना है, पिटाई करने का भी माना है, और जमाना भी है कि कौन से जमाने में हुई है ये पिटाई, माजी के जमाने में, और निस्बत इलल फाइल भी है। तो फेल का मफहूम मुरक्कब होता है किससे, तीन चीजों से, तवज्जो है, तीन चीजों से। कौन कौन सी तीन चीजें, मस्दरी माना और जमाना और निस्बत इलल फाइल। लेकिन क्या जुजे लफ्ज़ जुजे माना पर दलालत कर रहा है, ज़राबा, क्या ज़ाद ने मस्तर पर दलालत की, रा ने जमाने पर दलालत की, और बा ने निस्बत इलल फाइल पर दलालत की, तो लिहाजा फेल है मुफरद ही। जब जुजे लफ्ज़ जुजे माना पर दलालत नहीं कर रहा तो यह क्या है, मुफरद है, लेकिन इसका माना मुरक्कब है तीन चीजों से, मस्तर, जमाना और निस्बत इलल फाइल। तो सवाल पैदा होता है ये फेल को फेल क्यों कहते हैं। तो इन्होंने वजह जिक्र की कि फेल के अंदर चूंकि मस्दर आता है, फेल के अंदर क्या है, मस्दर, और मस्दर को अरबी जुबान में फेल कहते हैं। तो ये फेल का एक जुज मस्दर था और उस मस्दर को फेल कहते हैं, तो सारे का नाम ही क्या रख दिया, फेल। भाई देखो, एक है मस्दर, एक है फेल। फेल किसे कहते हैं, वो कलिमा जो अपने माना पर खुद बखुद दलालत करे और उसके अंदर तीन जमानों में से कोई जमाना भी जुड़ा हुआ हो, ये है फेल। भाई इसको फेल क्यों कहते हो, इसका नाम फेल क्यों रखा? कहते हैं क्योंकि इसके अंदर मस्दर है, और मस्दर का अरबी जुबान में क्या कहते हैं? फेल। तो इस एक जुज का नाम फेल था तो कुल का नाम ही क्या रख दिया? फेल रख दिया। तो इसको यूं कहेंगे तस्मियतुल कुल बि इस्मिल जुज, जुज की वजह से कुल का नाम ही रख देना। या इसको कहते हैं तस्मियतुल मुतजम्मिन बि इस्मिल मुतजम्मन। फेल के जिमन में क्या था? मस्दर था, तो फेल हुआ मुतजम्मिन, और मस्दर क्या हुआ? मुतजम्मन, जो उसके जिमन में है। तो मुतजम्मिन यानी उस सारे मजमूए का नाम ही क्या रख दिया? फेल रख दिया। तो तस्मियतुल मुतजम्मिन बि इस्मिल मुतजम्मन। भाई अच्छा भाई, अब आइए आज के सबक पर। भाई देखिए भाई, कहते हैं वकद उलिमा बिजाली का ऐ बि वजह हस्रिल कलिमति फिल अक्साम सलासती हद कुल वाहिद मिनहा ऐ मिन तिलकल अक्साम। वकद उलिमा बिजाली का ऐ बि वजह हस्रिल कलिमति, और तहकीक इसके जरिए जान लिया गया। जालिका इसके जरिए, जालिका इसमें इशारा है। देखो सिर्फ मतन मतन देखो, और वकद उलिमा बिजालिका, और तहकीक इसके जरिए जान लिया गया। हद कुल्ली वाहिद मिन्हा, उनमें से हर एक की तारीफ को, इसके जरिए जान लिया गया उनमें से हर एक की तारीफ, यानी इसम फेल और हर्फ इनमें से हर एक की तारीफ को इसके जरिए जान लिया गया। अब यह जालिका के जी इशारा किस चीज की तरफ है? आगे शारह जामी आपको बतला रहे हैं, ऐ बि वजह हसर कलिमति फिल अकसाम सलासती। ये जो वजह हसर थी कलिमा की अकसाम सलासा में, ये जो कलिमा को बंद किया गया था किस में? तीन अकसाम में। तो इसकी ये जो वजह हसर थी, इससे आपको मालूम हो गया हद कुल वाहिद मिन्हा, इनमें से हर एक की तारीफ। तो जालिका के जरिए इशारा है किसकी तरफ? वजह हसर की तरफ इशारा है। बात समझ में आ गए? कहते हैं वकद उलिमा बिजालिका, और तहकीक इसके जरिए जान लिया गया। आई बी वजह हसर कलिमति, यानी कलिमा के वजह हसर के जरिए फिल अकसाम सलासती, तीन अकसाम में, इसके जरिए जान लिया गया। क्या जान लिया गया? हद को, यह नाइबुल फाइल है उलिमा का, हद कुल वाहिद मिनहा, इनमें से हर एक की तारीफ को, इनमें से। ये मिनहा की हा जमीर किसको राजे बतला रहे हैं? अमीन तिलकल अकसामी, ये जमीर का मर्जा बतला दिया कि हा जमीर किसको राजे? ये जो तीन किस्में पीछे जिक्र हुई थी, यानी इसम फेल और हर्फ, तो इसके जरिए जान लिया गया इन तीन किस्मों में से हर एक की तारीफ को। बात समझ में आ गई? यहां सवाल पैदा होता है वकद उलिमा बिजालिका, भाई पीछे वजह हसर जिक्र हुई थी, और एक दफा जब चीज जिक्र हो जाए तो उसको दोबारा जमीर के साथ जिक्र किया जाता है, तो साहिब काफिया को यूं कहना चाहिए था वकद उलिमा बिही, वकद उलिमा बिही, एक दफा जब चीज जिक्र हो जाए तो दोबारा उसको जमीर के साथ जिक्र किया जाता है। मसलन मैं आपसे कहता हूं जैद मेरा दोस्त है, वो अच्छा आदमी है। देखो पहले मैंने जैद को जिक्र किया, और दूसरी दफा फिर मैंने क्या कहा? वो अच्छा आदमी है, वो कलफ यानी जमीर में लेकर आया। तो जब एक दफा चीज जिक्र हो जाए तो दोबारा उसको जमीर के साथ जिक्र किया जाता है, तो फिर ये साहिब काफिया ने जालिका इसमें इशारा को क्यों जिक्र किया? सवाल समझ में आया? तो याद रखो ये जो जालिका इसमें इशारा है, इसको वजह किया गया है महसूस और मुबसर चीज की तरफ इशारा करने के लिए। महसूस और मुबसर यानी वो चीज जो आंखों से दिखाई दे, जो महसूस हो, यानी वो चीजें जो आंखों से दिखाई दें। जैसे ये किताब आपको आंखों से दिखाई दे रही है, तो अब आप इसकी तरफ इशारा करके कह सकते हैं हादा किताबुन। कलम आपको आंखों से दिखाई देता है तो आप कह सकते हैं हादा कलमुन। तो हाजा, तो ये अस्मा इशारा किस लिए वजह है? इनके जरिए इशारा किया जाता है किसकी तरफ? महसूस और मुबसर चीजों की तरफ इशारा किया जाता है, इसके लिए इसको वजह किया गया है। और ये जो पीछे वजह हसर आई, तवज्जो है, वजह हसर आई, वो तो मानी का नाम था, कुछ बातें थीं जो हमारे समझ में आ रही थी, जो साहिब जामी, साहिब काफिया ने और साहिब जामी ने तफसील बयान कर दी। ये तो कुछ बातें हैं, कुछ फवाइद हैं, कुछ मफहूमात हैं जो कहां समझ में आ रहे हैं हमें, जो जहन में हमें समझ में आ रहे हैं। तो ये तो कोई महसूस और मुबसर चीज नहीं, ये आंखों से दिखाई देने वाली चीज नहीं है। तो इसकी तरफ जालिका के जरिए कैसे इशारा कर दिया? تو جواب یاد رکھنا کہ ذالک اصل میں وضع تو محسوس اور مبصر کے لیے ہے، لیکن معقول چیزوں کے لیے بھی، یعنی وہ چیزیں جو عقل میں آتی ہیں، جو سمجھ میں آتی ہیں، جو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی، تو ان کی طرف بھی اس کے ذریعے اشارہ کر دیا جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو وضع تو محسوس اور مبصر کے لیے، لیکن استعمال معقول میں بھی ہو جاتا ہے. جب معقول چیز بہت واضح اور ظاہر ہو تو اس کو بھی اسی درجے میں اتار لیا، گویا یہ بات اتنی واضح ہے کہ جیسے آنکھوں سے کوئی چیز دکھائی دے رہی ہو. تو یہاں پر بھی وجہ حسر کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کس کو لانا چاہیے تھا؟ ضمیر کو. لیکن صاحب کافیہ کیا لے آئے؟ اس میں اشارہ لائے یہ بتلانے کے لیے کہ یہ جو میں نے وجہ حسر ذکر کی ہے یہ اتنی واضح ہے، اتنی واضح ہے جیسے کوئی چیز آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے اور واضح ہوتی ہے، اسی طرح میری یہ وجہ حسر بھی بڑی واضح ہے. تو بہی کے بجائے کیا کہا؟ ذالکا کہا. بات سمجھ میں آ گئی. اس کو کہتے ہیں وضع المظہر موضع المزمر. وضع المظہر یعنی اس میں ظاہر کو رکھ دینا. موضع المزمری کس کی جگہ پر؟ ضمیر کی جگہ. میں نے بتایا تھا ایک ہے ضمیر، ایک ہے اس میں ظاہر. ضمیروں کے علاوہ دنیا کے جتنے اسم ہیں وہ کیا ہیں؟ اس میں ظاہر. تو اس میں اشارہ بھی کیا ہوا؟ اس میں ظاہر. تو ایک مقام ہو ضمیر کا اور آپ کیا لے آئیں؟ اس میں ظاہر لے آئیں. اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی نقطہ اس کے اندر ہوتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ وضع المظہر موضع ال، یا یوں کہیں وضع الظاہر موضع المزمر. توجہ ہے؟ وضع الظاہر کیا مانا؟ اس میں ظاہر کو رکھ دینا. موضع المزمر کس کی جگہ پر؟ ضمیر کے مقام پر. اس میں ظاہر کو رکھ دینا، اس میں کسی نقطے کی طرف اشارہ ہوتا ہے. مقام تو ضمیر کا ہوتا ہے، لیکن صاحب کتاب یا صاحب قول جو ہوتا ہے وہ اس میں ظاہر کو لے آتا ہے. تو یہاں پر میں نے بتلا دیا کیا نقطہ ہے، کہ صاحب کافیہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو وجہ حسر ذکر کی وہ اس قدر ظاہر ہے جیسے کہ ایک مبصر اور محسوس چیز ہوتی ہے، اسی کی طرح واضح ہے. تو کہتے ہیں وقد علم بذالک، اور تحقیق اس کے ذریعے، یعنی جو کلمہ کی اقسام ثلاثہ کے اندر وجہ حسر ہے، اس کے ذریعے جان لیا گیا حد کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو، ای من تلک الاقسام، یعنی ان اقسام میں سے. وذالک، بھئی دیکھیے ادھر وجہ حسر کیا ذکر ہوئی؟ کہ کلمہ یا تو وہ اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر دلالت نہ کرے تو وہ حرف ہے، اگر خود بخود دلالت کرے پھر اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوگا یا ملا ہوا نہیں ہوگا. اگر ملا ہوا نہ ہو تو وہ اسم ہے، اور اگر ملا ہوا ہو تو وہ فعل. دیکھا ہر ایک کی تعریف پوری طرح سمجھ میں آ گئی. کیا پتا چلا؟ حرف کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے معنی پر خود دلالت نہ کرے وہ کیا ہے؟ حرف. اور فیل کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے معنی پر خود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانہ میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا ہو. اور اسم کسے کہتے ہیں؟ جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت کرے اور اس کے ساتھ تین زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو. دیکھا ہر ایک کی تعریف خود بخود سمجھ میں آ گئی. اب اسی کو بیان کریں گے. کہتے ہیں وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ عُلِمَ بِهِ، اور یہ اس وجہ سے کیونکہ جان لیا گیا بھی ای بی وجہ الحسری، وجہ حسر کے ذریعے یہ بات جان لی گئی کہ ان الحرف کلمت لا تدل علی معنی فی نفسها، کہ حرف ایسا کلمہ ہے جو دلالت نہیں کرتا ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہو. بل تحتاج الی انضمام کلمت اخرى، بلکہ وہ محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے کلمے کے ملنے کا. حرف وہ کلمہ ہے جو اپنے معنی پر خود بخود دلالت نہیں کرتا، بلکہ وہ محتاج ہوتا ہے کسی دوسرے کلمے کے ملنے کا، پھر ہی اس کا معنی سمجھ میں آتا ہے. دیکھو یہ حرف کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی. والفعل کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، اور فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہے. لیکنہ مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثہ، لیکن وہ معنی جو ہے ملا ہوا ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے سے. دیکھا فعل کی تعریف بھی وجہ حسر سے سمجھ میں آ گئی، اسی طرح اسم کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی، وہ بھی بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں والاسم کلمۃ تدل علی معنی فی نفسها، اور اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی پر جو اس کی ذات میں ہوتے ہیں. غیر مقترن بی احد الازمنت الثلاثہ، وہ معنی جڑا ہوا نہیں ہوتا تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ. دیکھا تینوں کی تعریف یہ وجہ حصر سے سمجھ میں آ رہی ہے. فالکلمت مشترکت بین الاقسام الثلاثہ، تو کلمہ وہ مشترک ہے تینوں اقسام کے اندر. کلمہ کیا ہے؟ تینوں اقسام میں مشترک ہے، یعنی تینوں پر صادق آ رہا ہے. تینوں پر صادق آ رہا ہے. کلمہ کسے کہتے تھے؟ لفظوں وضع لمعنی مفرد، ایسا لفظ جو اس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے. تو ان میں سے ہر ایک حرف وہ اپنے معنی پر خود تو دلالت نہیں کرتا، لیکن دوسرے کلمے کے ملنے کے بعد دلالت کرتا ہے. تو دیکھو یہ بھی ایسا لفظ ہے جس کو وضع کیا گیا ہے مفرد معنی کے لیے. اسی طرح اسم بھی ایسا ہے، فعل بھی ایسا ہے. تینوں کیا ہو گئے؟ کلمہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، کلمہ ان میں مشترک ہے. تو کہتے ہیں فل کلمہ تو مشترک تم بین الاقسام الثلاثہ، تو کلمہ جو ہے مشترک ہے تینوں قسموں میں. والحرف ممتاز عن اخویہ، یہ سارا بیان کر رہے ہیں بھائی کہ وجہ حصر کمال کی وجہ حصر ذکر کی ہے صاحب کافیہ نے، ہر ایک کی تعریف بھی سمجھ میں آ گئی اور ہر ایک دوسروں سے ممتاز بھی ہو گیا. آپ حرف کو پہچاننا چاہتے ہیں وجہ حصر کو سمجھ لیں، آپ حرف کو پہچان لیں گے. آپ اسم کو پہچاننا چاہتے ہیں وجہ حصر کو سمجھ لیں، آپ اسم کو پہچان لیں گے. آپ فعل کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس کو ممتاز کرنا چاہتے ہیں، آپ وجہ حصر کو سمجھ لیں، آپ فعل کو پہچان لیں گے. کس طرح؟ دیکھو تین چیزیں، اسم، فعل اور حرف. وجہ حصر سمجھ میں آ گئی، اب آپ حرف کو جاننا چاہتے ہیں کہ حرف کیسے، حرف کو ہم کیسے ممتاز کریں گے، کیسے جدا کریں گے اسم اور فعل سے. حرف کیسے جدا ہوگا؟ اسم میں اور حرف میں کیا فرق ہے؟ شاباش، حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا اور اسم اور فعل تو اپنے معنی پر خود دلالت کرتے ہیں، تو دونوں سے ممتاز ہو گیا. جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے اور وہ خود اپنے معنی پر دلالت کریں سمجھ جائیں یا وہ اسم ہے یا فعل ہے، اور اگر وہ دلالت نہ کرے سمجھ جائیں وہ حرف ہے. تو حرف ممتاز ہوا اپنے دونوں دوسری دو قسموں سے. کس وجہ سے؟ کہ یہ اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا. دیکھیے کہتے ہیں والحرف ممتاز عن اخویہ بعدم الاستقلال فی الدلالتی، اور حرف جو ہے وہ ممتاز ہے اپنے دونوں بھائیوں سے یعنی اسم اور فعل سے. بعدم الاستقلال فی الدلالتی، دلالت میں غیر مستقل ہونے کی وجہ سے. دلالت میں کہ دلالت میں غیر مستقل ہے، مستقلا یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتا، دونوں سے دیکھو جدا ہو گیا، ممتاز ہو گیا. والفعل ممتاز، ادھر دیکھیے، اب بتائیے ادھر، یہ ہے اسم، یہ ہے فعل، یہ ہے حرف. آپ فعل کو آپ پہچاننا چاہتے ہیں، ممتاز کرنا چاہتے ہیں، جدا کرنا چاہتے ہیں، کس سے؟ اسم سے اور حرف سے. تو کیسے جدا کریں گے؟ حرف سے کیسے جدا کریں گے؟ ہاں، حرف اپنے معنی پر خود دلالت نہیں کرتا اور فعل تو اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے، تو حرف سے جدا ہو گیا فعل. اور فعل کو اسم سے کیسے جدا کریں گے؟ ہاں، فعل کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا ہوتا ہے، اسم کے ساتھ زمانہ جڑا ہوا نہیں، تو فعل بھی دونوں سے کیا ہو گیا؟ ممتاز ہو گیا. دیکھیے بھائی کہتے ہیں والفعل ممتاز عن الحرف بالاستقلال، اور فعل جو ہے وہ ممتاز ہے حرف سے یعنی اس سے جدا ہے. بالاستقلال مستقل ہونے کی وجہ سے کہ وہ دلالت میں مستقل ہے. وعن الاسم، اور فعل ممتاز ہے جدا ہے اسم سے. بالاقترانی، اقتران کی وجہ سے، کیونکہ فعل کیا ہوتا ہے؟ جڑا ہوا ہوتا ہے. اقتران کا کیا معنی؟ جڑا ہوا، ملا ہوا، کہ وہ جڑا ہوا ہوتا ہے زمانے کے ساتھ، وہ جڑا ہوا ہوتا ہے تین زمانوں میں سے کسی ایک کے ساتھ. والاسم، اچھا بھائی اب ادھر دیکھیے، اسم کیسے جدا ہے؟ اسم کو کیسے جدا کریں گے حرف اور فیلس؟ حرف سے کیسے جدا کریں گے اسم کو؟ اسم اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے اور حرف نہیں کرتا، تو اسم جدا ہو گیا حرف سے. اور فعل سے کیسے جدا کریں گے اسم کو؟ اس کے ساتھ زمانہ نہیں ملا ہوتا اور فعل کے ساتھ زمانہ ملا ہوتا، تو اسم بھی دونوں قسموں سے جدا ہوا. تو کہتے ہیں والاسم ممتاز عن الحرف بالاستقلال وعن الحرف بعدم الاقتران، اور اسم جدا ہے حرف سے. بالاستقلال، استقلال کی وجہ سے یعنی مستقل ہونے کی وجہ سے، کہ اپنے معنی پر مستقلاً دلالت کرتا ہے اور حرف نہیں کرتا. وعن الفعل، اور اسم ممتاز ہے فعل سے. بعدم الاقترانی، आदम इक्तरान की वजह से, यानी ये तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता। فعلم لكل واحد منها معرف جامع لأفراده مانع عن دخول غيرها فيه। देखा, वजह हसर से आपको हर एक की तारीफ समझ में आ गई और हर एक एक दूसरे से मुमताज हो गया। तो वजह हसर ऐसी खूबसूरत जिक्र की कि इसके लिए हर एक की जामع मानع तारीफ आपको समझ में आ गई। जामع हो यानी अपने तमाम अफराद को जमा कर ले, इसम की ऐसी तारीफ आपको समझ में आई जिसमें सारी दुनिया के इसम आ गए, और मानع है इसमें हर्फ या फेल दाखिल नहीं हो सकता। हर्फ क्यों नहीं दाखिल हो सकता? क्योंकि वो गैर मुस्तकिल है, और इसम तो क्या होता है? मुस्तकिल। और फेल क्यों नहीं दाखिल हो सकता? क्योंकि उसमें इख्तिरान जमानी है और इसमें इख्तिरान जमानी नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहते हैं فعلم لكل واحد منها, बस जान लिया गया इनमें से हर एक के लिए معرف ऐसी तारीफ جامع لأفراده जो उसके तमाम अफराद को जामع है, مانع عن دخول غيرها فيه और مانع है कि कोई गैर उसके अंदर दाखिल हो, कोई गैर उसके अंदर दाखिल नहीं हो सकता। وليس المراد بالحد هنا إلا المعرف الجامع المانع, और यहां पर हद से मुराद नहीं है मगर वो मुआर्रिफ जो जामे और माने हो। भाई यहां दरअसल इश्काल होता है। इन्होंने क्या कहा, साहिब काफिया ने क्या कहा कि हमने वजह हसर जिक्र की, वकद उलिमा बिजालिका हदू कुल वाहिद मिन्हा, इसके लिए हर एक की हद का पता चल गया। तवज्जो है, हद का पता चल गया। और आपने मंतिक में पढ़ा है हद किसे कहते हैं, एक होती है हद और एक है रसम। आपने भाई मंतिक में पढ़ा है किसी चीज की तारीफ कैसे करते हैं, मुआर्रिफ किसे कहते हैं, दो मालूम तस्वुरों को मिलाकर मजहूल तस्वुर को हासिल करना, ये क्या है, मुआर्रिफ है। तवज्जो है, इसको मुआर्रिफ और तारीफ कहते हैं, और ये तारीफ हकीकी कहलाती है। याद रखो, तारीफ हकीकी वो है जिसके जरिए सूरत गैर हासिला को हासिल किया जाता है। एक चीज का आपको इलम नहीं होता, तारीफ के जरिए आप उसको जान लेते हैं। जैसे आपने जब नह पढ़ना शुरू की, आपको कलिमा का इलम नहीं था, उस्ताद ने आपके सामने अल कलिमा कहा, आपको कुछ समझ में नहीं आया, यानी आपको कलिमा की सूरत हासिल नहीं थी, आपको उसकी पहचान ही नहीं थी। फिर आगे किताब वाले ने आपको बतलाया अल कलिमा तो लफ्जों वुज़िआ लिमाना मुफ्रदिन, अब आपको लफ्ज का भी पता था, आपको वजा का भी पता, या आपको लफ्ज का बताया गया, फिर वजा का बतलाया गया, और फिर माना और मुफरद का बताया गया। ये सारी चीजें जब आपने जान ली तो अब आपको कलिमा की तारीफ समझ में आ गई कि अच्छा भाई कलिमा बामाना लफ्ज को कहते हैं, वो लफ्ज जिसका कोई माना हो उसको क्या कहते हैं, कलिमा कहते हैं। तो देखा, ये जो तारीफ है कलिमा की, ये तारीफ और मुआर्रिफ इसके जरिए क्या किया जाता है, सूरत गैर हासिला को हासिल किया जाता है। क्या माना सूरत गैर हासिला, सूरत से मुराद सूरत नहीं है, मुराद है पहचान उसकी। यानी देखो, इस तारीफ से एक चीज की आपको पहचान हो गई, या जैसे आपको इंसान की हकीकत का पता नहीं था तो उसकी आपको हकीकत बतलाई गई कि अल इंसान हैवान नातिकुन, इंसान जो है हैवान नातिक को कहते हैं, तो हैवान नातिक के साथ उसकी तारीफ की गई। तो अब आपको इंसान का पता चल गया कि इंसान किसे कहते हैं, हैवान नातिक को कहते हैं। तो तारीफ हकीकी के जरिए सूरत गैर हासिला को हासिल किया जाता है, यानी एक चीज को पहचाना जाता है, जाना जाता है। और याद रखो, ये जो तारीफ है ये फिर दो किस्म पर है, एक को कहते हैं हद, हदुन दाल मुशद्दद है, और एक को कहते हैं रस्मुन। वो तारीफ जो जातियात पर मुश्तमिल हो उसको हद कहते हैं, और वो तारीफ जो अरजियात पर मुश्तमिल हो उसको रस्म कहते हैं। जैसे देखो, आप पढ़ चुके, एक है जिन्स, एक नौ, एक फसल, एक खासा और एक अरज है आम। तो कुल्लियात खमसा में से आपने पढ़ा है एक है फसल और एक है खासा। फसल किसे कहते हैं, जो एक हकीकत के अफराद पर बोला जाता है और उनकी हकीकत में दाखिल होता है, और खासा वो भी एक हकीकत के अफराद पर बोला जाता है लेकिन उनकी हकीकत से खारिज होता है, वो उनकी सिफत होता है। जैसे नातिक, ये फसल है, ये क्या है, फसल है। ये नातिक इंसान को बाकी तमाम हैवानात से जुदा कर देता है। आपने कहा हैवान नातिक, हैवान कहा तो उसमें बाकी हैवानात भी दाखिल थे, लेकिन जब नातिक की कैद साथ लगा दी, अब बाकी हैवानात क्या हुए, खारिज। तो ये इंसान के लिए फसल है, ये इंसान की जात में दाखिल है, उसकी हकीकत का जुज है और बाकी हैवानात से इंसान को जुदा कर देता है। खासा भी इसी तरह होता है, वो भी बाकी चीजों से एक चीज को जुदा करता है लेकिन वो हकीकत के अंदर दाखिल नहीं होता। जैसे इंसान के लिए जाहिक, इंसान क्या है, जाहिक है, जिहक करता है, हंसता है, और किसी हैवान के अंदर ये सिफत नहीं है। तो ये इंसान की सिफत है, इंसान की हकीकत में दाखिल नहीं, और बाकी चीजों से इंसान को अलग कर देता है, तो ये खासा है। तो वो तारीफ जिसके अंदर फसल आ जाए उसको कहते हैं हद, और वो तारीफ जिसके अंदर खासा आ जाए उसको कहते हैं रसम। तवज्जो है। तो तारीफ कितनी किस्म पर, दो, एक हद और एक रसम। हद जो किस पर मुश्तमिल होती है, जातियात पर, और रसम किसे कहते हैं, आरजियात यानी सिफात पर मुश्तमिल होती है। तो इश्काल यह होता है कि इन्होंने कहा वक़द उलिमा बिज़ालिका हद कुल्ली वाहिदिन मिन्हा, कि इस वजह हसर के जरिए हर एक की हद को जान लिया गया। और हद तो किस पर मुश्तमिल होती है, जातियात पर। हालांकि ये जो तारीफें आपने हमें समझा दी ऊपर, ये सब अरजियात हैं जी। भाई अपने माना पर दलालत करना या ना करना, यह क्या है, ये कलीमे की सिफत होगी, ये अपने माना पर खुद बखुद दलालत करेगा या दलालत नहीं, तो ये आरजी है, ये सिफत है। और इसी तरह उसके साथ तीन जमानों में से कोई जमाना मिला होगा या नहीं मिला होगा, ये भी क्या है, आरज है, सिफत है। लिहाजा इसको हद नहीं कहना चाहिए, रसम कहना चाहिए। लिहाजा साहिब काफिया को यूं कहना चाहिए था वक़द उलिमा बिज़ालिका रस्म कुल्लि वाहिदिन मिन्हा, इनमें से हर एक की रस्म को जान लिया गया वजह हसर के जरिए। इश्काल समझ में आया कि हद तो उस तारीफ को कहते हैं जो जातियात पर मुश्तमिल हो, और ये जो तारीफ की जा रही है ये तो जातियात नहीं है बल्कि आरजियात सिफात पर मुश्तमिल है, इसको रसम कहना चाहिए। तो आपको साहिब जामी बतलाएंगे कि हद से मुराद वो मंतिक वाली हद यहां मुराद नहीं है, हद से मुराद है जामिअ मानिअ तारीफ, ऐसी तारीफ जो अपने तमाम अफराद का इहाता कर ले, जामिअ हो, और गैर अफराद में से किसी को अपने अंदर दाखिल न होने दे, यानी माने अभी हो। तो हद से यहां क्या मुराद है, वो मंतिक हद मुराद नहीं बल्कि जामे माने तारीफ मुराद है, जामे माने तारीफ मुराद है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलैसल मुराद बिल हद हाहुना इल्लल मुआरिफ अल जामे अल मानेआ, और हद से यहां मुराद नहीं है मगर जामे माने तारीफ, या यू को इल्ला को जरा खत्म कर दो। देखो इधर देखिए, मसलन मैं आपसे कहता हूं मा जा अनी इल्ला जैदुन, मा जा अनी इल्ला, मेरे पास नहीं आया मगर जैद, ये तो मा और इल्ला के साथ तर्जमा है, मेरे पास नहीं आया मगर जैद। बा मुहावरा उर्दू में इसका तर्जमा यूं करेंगे, मेरे पास सिर्फ जैद आया, मेरे पास सिर्फ। देखो मा का क्या माना था, मा जा अनी नहीं आया, इल्ला जैदुन मगर जैद या सिवाय जैद के और कोई नहीं आया। तो ये मा और इल्ला को खत्म कर दो। वैसे उर्दू में मा मुहावरा तर्जमा करें इसका, कैसे करेंगे मा मुहावरा, मेरे पास सिर्फ जैद आया, देखो नहीं वाला लफ्ज मैंने खत्म कर दिया तर्जमे से, मेरे पास सिर्फ जैद आया, या सिर्फ ही का लफ्ज लिया इसमें, मेरे पास जैद ही आया, मेरे पास सिर्फ नहीं, या सिर्फ ले आओ या ही ले आओ, मेरे पास जैद ही आया, इसका भी वही तर्जमा है, मेरे पास सिर्फ जैद आया। तो यहां पर भी इसी तरह है वलैसल मुराद बिल हद हाहुना इल्लल मुआरिफ अल जामिअ अल मानिअ, और नहीं है हद से मुराद यहां पर मगर जामिअ मानिअ मुआरिफ यानी तारीफ, जामे माने तारीफ। ये मा और इल्ला को जरा खत्म कर दें, लैसा और इल्ला को बा मुहावरा तर्जमा करें, हाँ यहां पर हद से मुराद जामे माने तारीफ ही है, यहां पर हद से मुराद माने तारीफ ही है, या सिर्फ का लफ्ज़ ले आए, यहां पर हद से मुराद सिर्फ जामे माने तारीफ है, वो मंतिक वाली हद मुराद नहीं है। वलिल्लाही दर्रुल मुसन्निफी हैसु अशारा इला हुदूदिहा फी ज़िम्न दलील अल हसरी, ثُمَّ نَبَّهَ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ ثُمَّ صَرَّحَ بِهَا فِي مَا بَعْدُ بِنَاءً عَلَى تَفَاوُتِ مَرَاتِبِ الطَّبَائِعِ وَلِلَّهِ دَرُّ الْمُصَنِّفِ. یہاں سے صاحب جامی مصنف رحمہ اللہ کی عبارت کی تعریف کر رہے ہیں کہ صاحب کافیہ بڑی پیاری اور خوبصورت عبارت لے کر آئے اور انہوں نے تمام طلباء کی رعایت رکھی، ان کا لحاظ رکھا، اس لیے کیونکہ طلباء تین قسم کے ہوتے ہیں، کچھ طلباء بڑے ذہین ہوتے ہیں، کچھ متوسط ہوتے ہیں اور کچھ کمزور طلباء ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے جب وجہ حسر ذکر کر دی تو اس وجہ حسر سے جو ذہین طالب علم ہوگا اس وجہ حسر سے ہی اس کو حصہ فعل اور حرف تینوں کی تعریف سمجھ میں آ جائے گی. لیکن کچھ طلبہ متوسط ہوتے ہیں، وجہ حسر سے ان کو پوری طرح بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کی توجہ نہیں ہوگی، تو آگے پھر کہا وَقَدْ عُلِمَ بِذَلِكَ، اس وجہ حسر کے ذریعے جان لیا گیا حد کل واحد منہا، ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو، تو دوبارہ متنبہ کر دیا. اب جو متوسط طالب علم ہوگا وہ بھی اب متنبہ ہو کر غور کر کے اس سے تعریف کو سمجھ لے گا. اور بعض طلبہ کمزور ہوتے ہیں، جب تک خاص علیحدہ تعریف ذکر نہیں کریں گے ان کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، لہذا ان کے لیے آگے پھر وہ اسم فعل اور حرف کی باقاعدہ الگ الگ تعریف کریں گے. تو بڑی خوبصورت عبارت لائے، پہلے کیا ذکر کی، وجہ حسر، ذہین طالب علم اسی سے اسم فعل حرف کی تعریف بھی سمجھ لے گا. پھر کچھ طلبہ متوسط ہوتے ہیں، شاید ابھی تک ان کو بات سمجھ میں نہ آئی ہو پوری طرح، یا انہوں نے توجہ نہ کی ہو کہ اسے پوری تعریف سمجھ میں آ رہی ہے، تو آگے کیا کہہ دیا، اس پر متنبہ کر دیا کہ وقد علم بذلک حد کل واحد، کہ اس وجہ حسر سے ہر ایک کی تعریف سمجھ میں آ رہی ہے. اب متوسط طالب علم غور کرے گا وہ بھی اس کو سمجھ لے گا، اور پھر اگر کمزور ہے جس کو ابھی بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو اس کے لیے پھر آگے علیحدہ تینوں کی الگ الگ تعریف بھی کریں گے. تو صاحب جامی جو ہے مصنف کی تعریف کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں وللہ در المصنف حیث اشار الى حدودها فی ضمن دلیل الحصر. وللہ در المصنف، در یاد رکھو عربی زبان میں دودھ کو کہتے ہیں، کس کو کہتے ہیں، دودھ، اور عربوں کے لیے سب سے زیادہ نفع کی چیز دودھ تھی، کیونکہ یہ ریگستانی علاقہ ہے، یہاں فصلیں وغیرہ تو ہوتی نہیں، تو یہ مختلف حیوانات پالتے اور انہی کے دودھ پر یہ گزارا کرتے تھے، تو ان کے لیے سب سے زیادہ نفع کی چیز کیا تھی، دودھ تھی، جو ان کی زندگی کی بنیاد تھی بھائی. تو درن دودھ کو کہتے ہیں، اور پھر ہر خیر کثیر کے لیے استعمال کرنے لگے، ہر وہ چیز جس میں بہت زیادہ خیر ہو اس کو بھی درن کہنے لگے. تو اصل میں درن کس کے لیے وضع ہے، دودھ کے لیے، لیکن پھر ہر خیر کثیر کے لیے، ہر وہ چیز جس میں بہت زیادہ خیر ہو، بہت زیادہ فائدہ ہو، اس کے لیے بھی درن کا لفظ استعمال کرنے لگے. تو وللہ در المصنف، یہ عرب کا محاورہ ہے، جب کسی شخص میں وہ بہت بڑا کمال ہو تو اس کی اللہ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کہ یہ کمال اس کو کس نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالی نے عطا فرمایا ہے. تو مقصد یہاں تعجب کا اظہار ہوتا ہے کہ اتنا بڑا کمال ہے، اور نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف، کہ اللہ نے اس کو یہ کمال نصیب فرمایا ہے. تو یہاں پر بھی چونکہ صاحب کافیہ بڑی پیاری عبارت لائے تھے تو اللہ کی طرف نسبت کر دی، وللہ در المصنف، کہ اللہ ہی کے لیے ہے مصنف کا یہ کمال، یعنی کیا کمال کی وہ عبارت لے کر آئے ہیں بھائی. تو کس کی طرف نسبت کر دی، اللہ تعالی کی طرف نسبت کر دی، یعنی کتنی عجیب پیاری عبارت لے کر آئے مصنف. کہتے ہیں وللہ در المصنف، اور اللہ ہی کے لیے ہے مصنف کا یہ کمال، یعنی کتنے کمال کی وہ عبارت لائے ہیں، حیث اشار الى حدودها فی ضمن دلیل الحصر، اس ہے طور پر کہ مصنف نے اشارہ کر دیا الى حدودها، اسم فعل اور حرف کی تعریفات کی طرف، فی ضمن دلیل الحصر، کس کے ضمن میں، دلیل حسر کے ضمن میں، ان کی تعریفات کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی دلیل حسر آپ کو سمجھ میں آ گئی تو تعریفات بھی آپ کو سمجھ میں آ گئی، ایسی دلیل حسر ذکر کی. ثم نبہ علیہا، پھر اس پر متنبہ بھی فرمایا، بقولہ، اپنے اس قول کے ذریعے، وقد علم بذلک، اور تحقیق اس کے ذریعے، یہ پیچھے متن آیا تھا نا وقد علم بذلک، اس کے ذریعے پھر کیا کر دیا، دوبارہ اس پر متنبہ بھی فرما دیا کہ یہ جو وجہ حسر میں نے ذکر کی ہے اسی سے تعریف بھی سمجھ میں آ جاتی ہے. ثم صرح بها، پھر ان تعریفات کی تصریح بھی کی، فیما بعد، بعد کے اندر، बाद में अलग इसम फेल और हर्फ की अलग अलग तारीफ भी वो आगे चलकर करेंगे। तो कहते हैं सुम्मा सर्रहा बिहा, फिर उस तारीफात की तसरीह भी कर दी, फी मा बादू, इन दोनों के बाद, यानी वजह हसर और ये जो तंबीह के बाद, फिर बाद में इसकी तसरीह भी कर दी तारीफात की, अला बिना अन अला तफावती मरातिबी तबाई, बिना बर तफावत का माना है फर्क होना, मुख्तलिफ होना, मरातिब जमा है मरतबे की, अतबाए जमा है तबीयत की, तबीयतों के दर्जे मुख्तलिफ होने की बिना पर, यानी तबीयतें मुख्तलिफ होती हैं, कोई जहीन होता है, कोई मुतवस्सित होता है और कोई कमजोर होता है, तो तबीयतों के दर्जों के मुख्तलिफ होने के एतबार से उन्होंने भी ये इसम फेल और हर्फ की तारीफ जो है उसको वजह हसर में भी जिक्र किया, फिर उस पर तंबीह भी की बाद में, और तीसरी मरतबा फिर अलग अलग भी जिक्र कर दिया। बात समझ में आ गई, वलिल्लाह दरुल मुसनिफ, बात समझ में आ गई, अल्लाह ही के लिए है मुसनिफ का कमाल है, यानी ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है कि कितना कमाल किया मुसनिफ ने भाई। बात समझ में आ गई, चलिए बस भाई, हादा हुल मराम, अल्लाह आलम बिहकीकतिल कलाम।